नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। ले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की तीन युवतियों के साथ हुई नस्लीय दुर्व्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की है। मणिपुरी फिल्म बॉन्ग ने बाफ्टा पुरस्कार जीता। ये बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से दो दिवसीय इसराइल दौरे पर रवाना होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 का शुभारंभ किया। सरकार की एनएमपी 2.0 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल से अगले 5 से 10 वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 40 लाख करोड़ रुपए से वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास कल शाम रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन ने 20 जापानी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण सूची में और 20 अन्य को निगरानी सूची में डाल दिया है। बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद 5 अगस्त 2024 के बाद दर्ज सभी मामलों की नए सिरे की समीक्षा का आदेश दिया है। उनका कहना है कि इस कदम का उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को उत्पीड़न से बचाना है। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की तीन युवतियों के साथ हुई नस्लीय दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है और समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और त्वरित एवं सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री खांडू ने कहा, हम पीड़ित युवतियों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी सुरक्षा, गरिमा और न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने भी तीनों युवतियों के साथ कथित नस्ली उत्पीड़न और मौखिक दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। APSCW ने इस बात की सराहना की कि भारत न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। हालांकि आयोग ने संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष, तथ्य और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि न्याय में कोई देरी न हो। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने भी इस घटना की निंदा की। मणिपुरी फिल्म बॉन्ग ने बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। ये फिल्म इस वर्ष बाफ्टा में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म थी। इसकी घोषणा बाफ्टा के आधिकारिक पेज पर की गई। बॉन्ग का मुकाबला आर्को, लीलो एंड स्टिच और जूतोपिया 2 से था। इसे लक्ष्मी प्रिया देवी ने लिखा और निर्देशित किया है और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की एक्सल एंटरटेनमेंट ने निर्मित किया है। फिल्म में गुगुन किपगेन और बाला हिजाम ने अभिनय किया है। बॉन्ग एक छोटे लड़की की कहानी है जो अपने लापता पिता की तलाश में निकलता है और उन्हें अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए वापस लाना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत 80 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा से सिविल न्यायाधीशों को तैनात करने और न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एक पत्र पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि इस कार्य में लगे 250 जिला न्यायाधीशों को सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 80 दिन लगेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वो आज मुंबई के लोकभवन में राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाना और स्वास्थ्य भारत का निर्माण का उद्घाटन करेंगी। अपने दूसरे दिन के दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को बुलडाना के शेगांव में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन करेगी। इसी दिन वे नागपुर में ब्रह्मा कुमारिया द्वारा आयोजित एकता और विश्वास के माध्यम से महाराष्ट्र का स्वर्ण युग के राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पर्यटन सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि ये संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक सेतु और आर्थिक अवसरों का एक प्रमुख चालक है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सौम्य कूटनीति का एक शक्तिशाली साधन है और भारत अमरीका आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौशल उद्यमियता और महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों में निवेश करने पर जोर दिया। मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार ने देश में निष्पक्ष मतदाता सूचियों पर जोर देते हुए कहा कि ये किसी भी लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार ने ये बात आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य अपने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्थाओं के संबंध में निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। ये गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। पिछला ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय इसराइल यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री तेल अविव में अपनी इसराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इसके बाद यरूशलेम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी एक शोध रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल से अगले 5 से 10 वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 40 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों से मूल्य निकालकर और प्राप्त राशि को नई अवसंरचना परियोजनाओं में पूर्ण निवेश करके अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड के छात्रा जिले में सिमरिया में कल रात एक चार्टर एयर एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मौसम की स्थिति, ईटीसी, संचार और रखरखाव रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। सरकार ने शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता और मुआवजे का आश्वासन दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुई विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस की अध्यक्ष उदय भानु चीफ को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार चीफ पर विरोध प्रदर्शन का मुख्य संयंत्रकारी होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वो राष्ट्र विरोधी नारा लगाने में शामिल था। चीफ के साथ श्री कृष्ण हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव और अजय कुमार यादव भी सहआरोपी है। चीफ को भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस कृत्य का समर्थन नहीं कर रहे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता जैसे पद पर आसीन व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ में नहीं आता। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने अपने युवा विंग के प्रमुख और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और वैध था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्यासा काना और वहां के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला की शुरुआत 6 विकेट से हार के साथ की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 48.3 ओवरों में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। बैथ मूनी और कप्तान एलिसा हिली के अर्ध शतकों की बदौलत मेजबान टीम ने सिर्फ 38.2 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।